दिन भर तारीख 21 दिसंबर दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। दिल्ली के एक कोर्ट ने 2G मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा समेत सभी अभियुक्तों को किया बरी। डीएमके का दिल्ली से चेन्नई तक जश्न।
जज कमेंटेड दैट द प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव एनी ऑफ द चार्जेस।
कोर्ट के फैसले को लेकर आमने सामने कांग्रेस बीजेपी, मनमोहन ने कहा हुआ था दुष्प्रचार, जेटली बोले सर्टिफिकेट नहीं ये फैसला।
मैसिव प्रोपेगेंडा व्हिच वाज बीइंग डन अगेंस्ट यूपीए।
कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे वक्तव्य दे रहा है जैसे कोई सम्मान पत्र उसको मिल गया हो।
और स्पेन के कैटालोनिया में स्थानीय संसद के लिए मतदान, आजादी समर्थक और विरोधी दोनों चुनाव मैदान में।
We are facing an historic election. I call everyone.
होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। 2G घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और कनिमोड़ी समेत सभी 17 लोगों को बरी कर दिया है। ये घोटाला साल 2010 में सामने आया जब भारत के महालेखाकार और नियंत्रक यानी कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले पर सवाल खड़े किए थे। आरोप था कि अगर लाइसेंस नीलामी के आधार पर दिए जाते तो खजाने को कम से कम 1,76,000 करोड़ रुपये और मिल सकते थे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र को झूठों का अड्डा कहा है। उनका ये बयान ऐसे वक्त आया है जब संयुक्त राष्ट्र में आवाजें उठ रही हैं कि अमरीका को यरूशलेम को इसराइल की राजधानी बताने वाला अपना फैसला वापस लेना चाहिए। अब से कुछ देर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बारे में वोटिंग होने वाली है। बेन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल ने इस मुद्दे पर वोट करने से इनकार कर दिया है।
היחס לישראל מצד מדינות רבות בעולם בכל היבשות משתנה מחוץ
לכ... संयुक्त राष्ट्र की दीवारों के बाहर सभी महाद्वीपों पर इसराइल के बारे में कई देशों का रवैया बदल रहा है और ये संयुक्त राष्ट्र में भी होगा, जो कि फिलहाल झूठों का अड्डा बना हुआ है। इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग होने से पहले ही इसराइल ने इसमें हिस्सा लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। यरूशलेम हमारी राजधानी है और हम वहाँ इमारतें और अमरीका के नेतृत्व में वहाँ विदेशी दूतावास बनाने का काम जारी रखेंगे, जो यरूशलेम में ही बनाया जाएगा। जो मैं कह रहा हूं वो जरूर होगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने कहा है कि वो वक्त के साथ आईफोन के कुछ पुराने मॉडल की परफॉर्मेंस यानी काम करने की क्षमता कम कर देती है। कंपनी का कहना है कि ऐसा फोन की उम्र बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि फोन के पुराने होने के साथ साथ उसकी बैटरी भी कमजोर होने लगती है। काफी समय से एप्पल फोन के खरीदार कंपनी पर आईफोन के परफॉर्मेंस को कम करने का आरोप लगा रहे थे। इस बात का पता लगाने वाली तकनीकी कंपनी प्राइमेट लैब्स के संस्थापक जॉन पूल ने कहा,
As your battery ages, it's less able to provide power to the phone. After the battery passes a certain point, Apple will limit the...
जैसे जैसे आपके फोन की बैटरी पुरानी होती जाती है, वो आपके फोन के साथ जरूरी सहयोग नहीं कर पाती। एक निश्चित वक्त गुजरने के बाद एप्पल फोन के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कम कर देता है ताकि वो लंबे समय तक ऑन रह सके। अगर किसी व्यक्ति के सामने ऐसी मुश्किल पेश आ रही हो तो शायद उन्हें नए फोन के बारे में सोचने की बजाय नई बैटरी के बारे में सोचना चाहिए। तकनीकी कंपनी प्राइमेट लैब्स के संस्थापक जॉन पूल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया में अधिकारियों का कहना है कि मंकीपॉक्स नाम का संक्रामक रोग देश के 36 राज्यों में से 23 राज्यों में फैल चुका है। इस बीमारी से कम 60 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये बीमारी इंसान को बंदर, चूहों और जंगली जानवरों से हो सकती है और इसमें बुखार और दर्द होता है और बदन में छाले पड़ जाते हैं। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है। इसी साल के सितंबर में मंकीपॉक्स संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में पुलिस ने सड़क के किनारे चल रहे लोगों पर कार चढ़ाने के लिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि ये घटना शहर के बीचों बीच स्थित एक व्यस्त चौराहे पर हुई और इसमें कुल 19 लोग घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये घटना सोच समझकर अंजाम दिया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि फिलहाल इसे चरमपंथ से जोड़ना जल्दबाजी होगा। पुलिस के मुताबिक कार चालक अफगान मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव।
इन्होंने प्रिजम्प्टिव लॉस की थ्योरी देकर कह दिया कि 176,000 का नुकसान हुआ, नुकसान तो कुछ हुआ भी नहीं।
ग्लैड दैट द कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड अनएम्बिगुअसली दैट ऑल दिस मैसिव प्रोपेगेंडा व्हिच वाज बीइंग डन अगेंस्ट द यूपीए।
लेकिन इसका जो इतिहास है वो एक भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है और तथ्यों से वो साबित हो चुका है।
इसमें और ऊपर जाना चाहिए। अगर सरकार ने आपके पास ठोस सबूत है वो सब मिलाकर और आगे बढ़ना चाहिए।
दिल्ली के एक कोर्ट का फैसला और उसके बाद पूरे राजनीतिक तबके ने उसकी व्याख्या शुरू कर दी। अभी आपने डीएमके नेता कनिमोड़ी, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की आवाजें सुनी। दरअसल आज दिल्ली में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम के उस मामले में फैसला सुनाया जिसने साल 2010 के बाद भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। सीएजी ने साल 2010 की अपनी रिपोर्ट में दो साल पहले यानी साल 2008 में हुए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल उठाए। सीएजी की उस रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसे भारत के अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक बताया गया था। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके नेता कनिमोड़ी समेत कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कोर्ट ने आज सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। सुनिए बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे की ये रिपोर्ट।
जज ओपी सैनी ने बहुत थोड़े समय में फैसला सुना दिया। पूरी अदालत खचाखच भरी थी। वहाँ मौजूद एक वकील ने अदालत के अंदर का दृश्य बयान किया।
अब ये जजमेंट तो आप देखेंगे बाद में, क्योंकि 2000 पेज की जजमेंट है वो अभी किसी को मिली नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट जज साहब ने पढ़ा। भीड़ इतनी थी, मुलजिम अंदर नहीं आ पा रहा था, ये हालत थी।
निर्णय के बाद ए राजा और कनिमोड़ी के समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर आतिशबाजी शुरू कर दी। पूर्व दूरसंचार मंत्री को अपने कंधों पर उठा लिया और उन पर फूल बरसाते हुए उन्हें अदालत के बाहर लाए। ए राजा के वकील विजय अग्रवाल ने अदालत के बाहर पत्रकारों से बात की।
जज कमेंटेड दैट आई हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट द प्रोसिक्यूशन।
मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष के वकील अभियुक्तों के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने में पूरी तरह असफल रहे हैं, इसलिए सबूतों के अभाव में सभी अभियुक्तों को बरी किया जाता है।
बरी होने के बाद पूर्व मंत्री ए राजा ने फैसले पर खुशी जाहिर की। 2G घोटाले का संबंध 2008 के दौरान दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम के आवंटन में हुई अनियमितताओं से है। 2009-10 के बीच उजागर हुए इस मामले ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार की भ्रष्ट छवि को पुख्ता करने का काम किया था। 2011 में सीबीआई ने इस मामले में अपनी पहली गिरफ्तारियां की और 2012 में सर्वोच्च अदालत ने एक विशेष आदेश के तहत यूपीए सरकार द्वारा 122 दूरसंचार कंपनियों को दिए गए लाइसेंस रद्द कर दिए। ए राजा तथा बाकी अभियुक्तों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था, ए राजा ने पहले आओ पहले पाओ जैसी स्पेक्ट्रम आवंटन के सारे नियमों को ताक पर रखकर आवंटन के लिए अपनी समानांतर व्यवस्था बना ली थी। राजा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंधेरे में रखकर उन्हें भ्रमित करने का भी आरोप था। आज फैसले में जज सैनी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि दरअसल ये कोई घोटाला था ही नहीं।
मैं 7 सालों तक इंतजार करता रहा, काम के हर दिन, गर्मियों की छुट्टियों में भी मैं हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस अदालत में बैठकर इंतजार करता रहा कि कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत लेकर आए, लेकिन कोई भी नहीं आया। इससे ये संकेत मिलता है कि सभी लोग पब्लिक परसेप्शन से चल रहे थे जो अफवाहों, गपबाजी और अटकलबाजियों से बनी थी। बहरहाल अदालती कार्यवाही में पब्लिक परसेप्शन कोई मायने नहीं रखता।
2011 में 2G घोटाले में गिरफ्तारियां शुरू होते ही तत्कालीन दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने अपने एक बहुचर्चित बयान में जीरो लॉस थ्योरी का जिक्र करते हुए कहा था कि इस घोटाले से भारत सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज अदालत के निर्णय के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि आज यह साबित हो गया कि उनकी बताई गई जीरो लॉस थ्योरी सही थी और इस घोटाले से सरकार को वाकई कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
रिपोर्ट सुना रही थी प्रियंका दुबे। कोर्ट के सामने भले ही कोई सबूत ना आए हो, लेकिन आज कोर्ट का फैसला आते ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। संसद में जमकर हंगामा हुआ तो बाहर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। किसने क्या कहा, सुनिए भूमिका राय की इस रिपोर्ट में।
कोर्ट का फैसला आने के कुछ ही देर बाद राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। सभापति वेंकैया नायडू को बार बार सदन में मौजूद लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। टूजी घोटाला साल 2010 में सामने आया था, जब भारत के महालेखाकार और नियंत्रक कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे। आज फैसला आने के बाद कांग्रेस नेताओं का रुख आक्रामक रहा। सुनिए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने क्या कहा।
हमारे देश में न्याय जब चलते हैं आप अदालत को छोड़ देते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जो अदालत ने तय किया नचले में स्वीकार करना है। मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि जो कह रहे थे कि हमारे देश की बहुत लूट हो गई, पैसे मतलब गायब हो गया वगैरह, अभी जो अदालत कह रहे हैं बात तो अलग लग रही है।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि वो शुरू से कह रहे थे कि जो हुआ उसमें कुछ भी गलत नहीं था।
बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हुआ, व्यवस्था को नुकसान हुआ, एनपीएस बढ़ गए इसी वजह से, क्योंकि लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो गए, वो पैसा जो उन्होंने उधार लिया था बैंक के साथ लोन पे लिया था वो वापस नहीं कर पाए, तो आर्थिक स्थिति में मंदी आई और आज और इस वजह से विनोद राय की वजह से और बीजेपी की वजह से।
2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे। आज फैसला आने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये पहले आओ पहले पाओ नहीं बल्कि फर्स्ट पे फर्स्ट सर्व की पॉलिसी थी।
इसका जो इतिहास है वो एक भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है और तथ्यों से वो साबित हो चुका है। जीरो लॉस थ्योरी तो उस दिन डिस्प्रूव हो गई थी जिस दिन 1734 करोड़ रुपए में दिया हुआ स्पेक्ट्रम सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2012 में रद्द कर दिया था और बाद में जो स्पेक्ट्रम नीलाम हुआ तो उसमें कितने गुना ज्यादा दाम मिला।
इस मामले में सीबीआई ने जो आरोप दाखिल किया था उसमें लगभग 30,000 करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी। आरोप था कि अगर लाइसेंस नीलामी के आधार पर दिए जाते तो खजाने को कम से कम 1,76,000 करोड़ रुपए और हासिल हो सकते थे। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से ये साबित होता है कि सत्ता पाने के लिए ये सब कुछ भाजपा की साजिश थी।
कांग्रेस भी डीएमके भी और सब राजनीतिक दल अब देश के 125 करोड़ लोगों से ये जरूर कहेंगे और लोग पूरी भाजपा से, जिन्होंने 3 साल तक इस देश की संसद को नहीं चलने दिया, इस देश में बदनामी का एक माहौल पैदा किया, पूरे देश की व्यवस्था को बदनाम किया, देश की संस्थाओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया, विनोद राय के साथ मिलकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रकारी खेल जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को और देश को नुकसान हुआ, उसके लिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देश को जवाब तो देना पड़ेगा।
नुकसान के आंकड़ों पर कई तरह के आरोप थे लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था और मामले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल की गई थी।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। 2G मामले में कोर्ट के फैसले के बाद डीएमके को राहत मिली है। इसके बाद क्या दक्षिण भारत में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? डीएमके नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के साथ उनकी साझेदारी मजबूत है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक नए समीकरणों के संकेत तलाश रहे हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
जिस दिन 2G घोटाला सामने आया उस दिन एक अखबार ने अपनी हेडलाइन में 1,76,00,000 करोड़ रुपये अंकों में लिखे थे। अन्ना डीएमके के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ उस हेडलाइन की फोटोकॉपी निकाली और लोगों से ये सवाल पूछा था कि आपने इतने सिफर कभी गिने थे। उसका नतीजा अगले चुनाव पर पड़ा और डीएमके का नाम बदनाम हो गया था। आज के कोर्ट के निर्णय के बाद तमिलनाडु की राजनीति पर किस तरह का असर पड़ सकता है, हमने ये सवाल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानी शंकरन से पूछा। उन्होंने कहा ये जाहिर है कि इस कोर्ट के निर्णय से डीएमके को बहुत फायदा होगा, खासकर जब स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं और अगले असेंबली के चुनाव भी। डीएमके के लिए ये एक नैतिक जीत है और हाँ, बीजेपी डीएमके के साथ गठबंधन बनाने के लिए विकल्प खुले रखेगी, क्योंकि कहीं डीएमके में एक तरह की अनुभूति है कि 2G के मामले में कांग्रेस ने उसका साथ नहीं दिया था। ये थे ज्ञानी शंकरन के शब्द। लेकिन डीएमके के राज्यसभा सदस्य तिरुचि शिवा अपनी पार्टी के रुख के बारे में कहते हैं, ये सवाल अभी तो उठता ही नहीं है। हमारे रिश्ते कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे हैं और हमें अभी ये नहीं लगता है कि इस रिश्ते में कोई बदलाव आएगा। आज के निर्णय से हम भी खुश हैं और कांग्रेस भी खुश है। 2019 के चुनाव में हम कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। ये थे तिरुचि शिवा के शब्द। तो क्या डीएमके को कांग्रेस के साथ जाना फायदेमंद होगा या बीजेपी के साथ जाना? हमने ये सवाल वरिष्ठ विश्लेषक और चेन्नई के डेक्कन क्रॉनिकल अखबार के स्थानीय संपादक भगवान सिंह से पूछा। उन्होंने कहा, देखिए, बीजेपी के लिए अन्ना डीएमके शर्मिंदगी बन गई है और डीएमके के लिए कांग्रेस एक बोझ बन गई है। आज के हालात ऐसे हैं कि तमिलनाडु में डीएमके सत्ता में आ सकती है, लेकिन केंद्र में डीएमके को एक मित्र सरकार चाहिए। ये थे भगवान सिंह के शब्द। भगवान सिंह के दृष्टिकोण कुछ मायने रखता है इस कारण के लिए, डीएमके वही एक क्षेत्रीय पक्ष है जो केंद्र में 15 साल तक अधिकार संभाला था। 1999 में डीएमके वाजपेयी की सरकार में शामिल हुई थी और फिर 2004 से 2013 तक मनमोहन सिंह की सरकार में भी भाग लिया था। तो राजनीति में मित्र बदलना कोई नई बात नहीं है। शायद इसीलिए पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीएमके नेता एम करुणानिधि से उनके सेहत के बारे में पूछने के लिए चेन्नई के घर पहुंच गए। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
जिन कारणों से मनमोहन सिंह सरकार की छवि खराब हुई थी उनमें 2G मामला सबसे ऊपर था। 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये एक ऐसा वाक्य था जो लोगों को रट गया था। भारतीय जनता पार्टी तब विपक्ष में थी और उसके नेताओं ने देश के कोने कोने में भ्रष्टाचार के इस कथित मामले के खिलाफ गंभीर प्रचार किया था। 2G की राजनीति पर नजर डाल रहे हैं हमारे साथी राजेश जोशी।
ऐसा जादूगर ये है, माँ बेटे का ये मॉडल है, माँ बेटे का ये कारोबार है। 2G का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन ली।
2G का तो सुना था, जीजा जी का भी सुन लीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने कभी सीधे तो कभी परोक्ष रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पर लिया। मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में चारों ओर से घिर चुकी थी। जनवरी 2011 में मनमोहन सरकार में मंत्री कपिल सिब्बल ने दावा किया कि घाटा दरअसल हुआ ही नहीं।
755 करोड़,
पर तब तक राजनीतिक फिजा बदल चुकी थी। लोकपाल की मांग को लेकर जल्दी ही अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक लोकप्रिय आंदोलन खड़ा हो गया। निशाने पर कांग्रेस सरकार थी। जनता पर कपिल सिब्बल और कांग्रेस की सफाई का कोई असर नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने चारों ओर से मनमोहन सिंह सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस घोटाले के कारण भारत की छवि पर असर पड़ा है।
जीरो लॉस की बात कही थी जब 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर और संसद के बाहर कहा था कि पुराने नियमों का पालन करके कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री ने राजा को निर्दोष भी बताया था। दुनिया भर में 2G स्कैम के कारण हमारी बदनामी हुई।
बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने 2G और कोयला खदान आवंटन को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला।
2G का मामला और कोयले के आवंटन का मामला दोनों अब एक ही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक कभी देश ने देखा नहीं। वो हवा में किया, ये पाताल में किया, और ये ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ और सरकार और कांग्रेस उस पर पर्दा डालने का पूरी कोशिश कर रही है।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय की रिपोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के कारण सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा होने की बात कही थी। पर बाद में बीबीसी से बात करते हुए विनोद राय ने कहा कि घाटे की रकम पर बहस हो सकती है।
नेशनल एक्सचेंज को घाटा तो हुआ, जरूर हुआ घाटा, ये बात किसी तरीके से डिनाई नहीं की जा सकती है, लेकिन घाटा कितना हुआ उसका डिबेट हो सकता है।
बहरहाल 2G मामले के कारण यूपीए सरकार की जो किरकिरी हुई उसे कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयला खदान आवंटन में हुए कथित भ्रष्टाचार के कारण और बल मिला और आखिरकार लोकसभा चुनावों में जनता ने कांग्रेस को खारिज करके सत्ता से बेदखल कर दिया। राजेश जोशी, बीबीसी दिल्ली।
बीजेपी ने राजनीतिक जमीन पर कांग्रेस को घेरने के लिए 2G मामले का जमकर इस्तेमाल किया। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता बीजेपी पर तीखे वार कर रहे हैं। क्या बीजेपी के लिए ये स्थिति कुछ असहज करने वाली हो सकती है? मैंने वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से यही सवाल किया।
देखिए, शॉर्ट टर्म में इसका फायदा कांग्रेस को है और उससे भी ज्यादा फायदा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डीएमके को है, और लॉन्ग टर्म में फायदा बीजेपी को हो सकता है। शॉर्ट टर्म में क्यों? क्योंकि इसको जरूर कांग्रेस कहेगी कि हम तो कह ही रहे थे, बीजेपी ने पूरे सेशन वाइप आउट कर दिए पार्लियामेंट के, इसी इश्यू को लेके सरकार को नहीं चलने दिया, संसद को नहीं चलने दिया, तो ये सब गलत निकला है। और जज ने बहुत कड़ी शब्दों में कहा है कि मैं 7 साल से एविडेंस का रोज इंतजार करता रहा हूँ और कुछ था नहीं, साफ बरी कर दिया सभी को। तो ये कांग्रेस इसको आगे ले जाएगी, बार बार आगे ले जाएगी, उसकी अपनी जगह है। लेकिन ये भी सही है कि कांग्रेस ने केस किए थे, कांग्रेस ने राजा को हटाया था। अब कांग्रेस कहेगी अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि शक की नजर से देखा जा रहा था, इसलिए हमने ये कदम लिए। असली फायदा जो है वो डीएमके को होगा, क्योंकि डीएमके सबसे ज्यादा इसका नुकसान पाया है चुनाव में पिछले। अब सिंपथी होगी डीएमके के लिए, अगले चुनाव में फायदा होगा। जहां बीजेपी को फायदा होगा मुझे लगता है, जिसकी शायद अर्ली चिन्ह दिखने को मिले थे जब नरेंद्र मोदी करुणा निधि से मिलने गए थे, जो कि बहुत बीमार हैं, और हो सकता है, आज हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, पर हो सकता है अगले चुनाव में डीएमके फिर से एनडीए के साथ हाथ मिलाए।
जी, ये एक संभावना है, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई की बात थी, वो लड़ाई अब कहाँ गई और कौन उसका झंडा बरदार होगा?
देखिए, यही बात है ना, इतना बड़ा बवाल 1.76 और इतने साल चला, और इसकी वजह से यूपीए को एकदम तहस नहस हो गई। देखिए, बीजेपी के लिए क्योंकि ये मुद्दा पास्ट का हो गया है ना, उस समय हुआ, परसेप्शन को नहीं मैनेज कर पाए, बीजेपी ने सवाल खड़े किए, शक के घेरे में आ गए यूपीए के नेता। ये भी है कि कदम भी उठाया, ऐसा नहीं कि जो चार्जशीट ये सब सारा मामला शुरुआत हुई 2011 में, तो वो यूपी के दौरान हुई ना, यूपीए वालों ने ही शुरुआत की थी ना, तो आज वो बिल्कुल ही बरी हो जाता है। तो समझ में, यहाँ तक करप्शन का सवाल है, मुझे लगता है इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया पॉलिटिक्स में।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। स्पेन के कैटालोनिया में नई स्थानीय संसद के गठन के लिए चुनाव हो रहे हैं। अक्टूबर में कैटालोनिया की संसद ने आजादी का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद स्पेन ने संसद को भंग कर दिया था। चुनाव के मैदान में आजादी समर्थक और विरोधी दोनों हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। कैटालोनिया के बर्खास्त नेता कार्लेस पुजिमोन बेल्जियम में है, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनिए। ये सामान्य दिन नहीं है, कई उम्मीदवार जेल में हैं, कई निर्वासित हैं। संस्थान की ओर से किए जाने वाला हस्तक्षेप जाहिर करता है कि हम सामान्य स्थिति में नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम लोकतंत्र को बचा सकते हैं। ये थे पुजिमोंट के शब्द। अभी तक मतदान शांतिपूर्ण रहा है, वोटिंग के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं एकजुटता के समर्थक सिटीजन्स पार्टी की प्रवक्ता इनेस आरामदास ने क्या कहा, वो भी सुनिए। ये ऐतिहासिक चुनाव है, मैं हर किसी से वोट देने की अपील कर रही हूँ, मुझे भरोसा है कि मतदान भी ऐतिहासिक होगा। तो ये कैटालोनिया के चुनाव, और अब सुनते हैं आपकी राय।
आपकी राय। आज बृहस्पतिवार है और हर बृहस्पतिवार की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी चिट्ठियां लेकर, और मेरे साथ खिलखिलाती हुई इंदु पांडे मौजूद हैं। इंदु, कहां से शुरू कर रही हैं आज?
पहले तो मैं अपने श्रोताओं को नमस्कार कर दूं।
नमस्कार।
और शुरुआत कर रहे हैं हम ये पोस्टकार्ड से। हमारे पास हमेशा की तरह विवेचना के लिए बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं, तो ये है मदन धुले से, और बाबरी मस्जिद के ऊपर जो विवेचना हुई थी उसको पसंद किया है अशोक कुमार मालीटोल अदलपुर से। रेडियो पत्रकारिता पर भी इन्होंने अपनी लिए इस प्रोग्राम के लिए चिट्ठी भेजी है। और आर के दुबे हैं रीवा से, प्रवीण चंद है पी वाघेला सौराष्ट्र गुजरात से, और दिन भर कार्यक्रम को पसंद किया है और संग संग गुनगुनाओ बहुत अच्छा लगा, हरिका फतेहपुर नरपतगंज से।
आपने बहुत सारी चिट्ठियां एक ही साथ समेट दी।
जी, इसलिए ताकि सबके नाम आ जाए ना।
हाँ, नाम आ जाए, और हमारे तमाम जो श्रोता हैं इस बात का इंतजार भी करते हैं कि भाई उनकी चिट्ठी मिली या नहीं मिली, और अगर मिली तो पढ़ी क्यों नहीं गई। और इसलिए अच्छा है कि कम से कम ये उन तक बात पहुंच जाए कि हमें आपकी चिट्ठियां मिल गई हैं और हमने पढ़ ली हैं।
जी, और ये है जीशान नैयर, ग्राम तरैया पोस्ट सांख जिला बेगूसराय से लिख रहे थे। गुजरात हिमाचल प्रदेश चुनाव परिणाम पे विशेष रेडियो प्रसारण बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छा लगा इनको।
एक घंटे का विशेष प्रसारण हमने किया था और राजेश जोशी अहमदाबाद गए थे और हमारे कई संवाददाता वहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है और इससे हमारा जो जिसे कहते हैं ना कि हौसला, वो भी बढ़ता है कि जब हम अच्छे कार्यक्रम करते हैं और आप उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि सिर्फ तारीफ ही नहीं, जो चीज़ें आपको लगा हो कि कम रह गई उनके बारे में भी ज़रूर लिखें।
तो उनके बारे में इन्होंने लिखा है।
अच्छा लिखा है
जी, कि आप लोग महिला श्रोताओं को सुनने और लिखने को कहते हैं लेकिन अब एक भी महिला प्रोग्राम नहीं कर रही है आपके यहाँ पे।
भाई ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और दरअसल इसका जवाब मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर भाई इंदु पांडे आप चिट्ठियाँ पढ़ रही हैं और सुशीला सिंह हमारे यहाँ की जो प्रस्तुतकर्ता हैं या कई जो लोग हैं वो अलग अलग कामों में बिजी हैं, अलग अलग दायित्वों को देख रहे हैं, इसलिए ऐसा ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है।
मोहसिन कुरैशी गुना MP से लिखते हैं कि सर आपका आज कल का मीडिया मोदी मीडिया हो गया है, सिर्फ नेताओं की उन बातों को जनता के सामने परोसते हैं जिनका जनता का उन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता।
मैं इस बात से बिल्कुल, जहां तक BBC की बात है, BBC अगर आप वेबसाइट को देखें या हमारे रेडियो प्रोग्राम सुने, हम हर तबके की बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जो हमारा बेसिक एजेंडा है यानी कि BBC का जो बेसिक एजेंडा है वो निष्पक्षता, खासकर समग्र विवेचना, उन मुद्दों को भी हम छूने की कोशिश करते हैं जो कि मीडिया में है ही नहीं, यानी कि दूर दराज के गाँव में बैठे हुए किसानों की बातें हों या फिर हमारे तमाम संवाददाता जो उन जगहों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं पर आमतौर पर पत्रकार नहीं जाते हैं और उन इलाकों की आवाज आप तक पहुंचती है। तो हमारा तो मकसद ही यही है कि उन लोगों की आवाजें भी आप तक पहुंचाएं, उनके विचार आप तक पहुंचाएं जो कि प्रासंगिक भी हैं और जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता।
और ये हमारे पास मेल आया है कि BBC हिंदी न्यू ईयर वर्जन की सारी शर्त मंजूर है, मुझे सिर्फ नमस्कार भारत और दिन भर की न्यूज डेली सुनने को चाहिए। और
वो तो हम कर ही रहे हैं
लगातार
हमारे दो प्रसारण जो चल रहे हैं, दिन भर शाम की सभा और नमस्कार भारत, में हम हर रोज आपसे मुखातिब होते हैं, नई खबरें सुनाते हैं और ये जो सिलसिला है ये चल रहा है और चलता रहेगा।
आशीष पांडे अहमदाबाद से लिखते हैं कि आप सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन एक शिकायत है कि कल के दिन भर प्रोग्राम में प्रसारित किया गया नरोदा पाटिया प्रोग्राम, उसमें आप एक समुदाय विशेष से ही जुड़े खबरों को क्यों प्रसारित करते हैं? अगर उन पर दंगों की मार पड़ी तो क्या गोधरा में हिंदू भाई लोग नहीं मारे गए? उनका भी तो दर्द बयां करें आप।
आशीष पांडे नाम बताया
जी।
आशीष भाई ऐसा नहीं है, जब गोधरा समाचारों में था या फिर गोधरा की हम बात कर रहे थे तो उन तमाम लोगों से भी हमने मुलाकात की थी और उस पक्ष की आवाज़ों को भी हमने सुनवाया था। रही बात संतुलन की, तो चूंकि नरोदा पाटिया प्रासंगिक था, इलेक्शन कवरेज था और इसलिए उसका हाल जानने के लिए राजेश जोशी वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन जहाँ तक आप गोधरा की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हमने कभी नहीं किया कि दूसरे पक्ष की आवाज़ें हमने आप तक ना पहुँचाई हों, क्योंकि दर्द एक होता है चाहे वो किसी भी पक्ष का दर्द हो। पीड़ित अगर है तो कोई भी पीड़ित हो उसका दर्द एक ही जैसा होता है और वो हम आप तक पहुंचाते जरूर हैं।
विनीत शिवहारे बैंगलोर से, भवानी शंकर वर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ से लिखते हैं कि आप अपने आर्काइव प्रोग्राम्स को हमेशा अपडेट रखिए तो अच्छा रहेगा, फ्रीक्वेंटली अपडेटेड होते रहने चाहिए।
लगातार करते रहते हैं और bbchindi.com पर वो उपलब्ध भी होते हैं। और इंदु अब हमें लगता है कि शायद ज्यादा वक्त नहीं है
जी,
तो पता एक बार फिर से आप नोट कर ले, आपकी राय पोस्ट बॉक्स नंबर 3035 BBC हिंदी सेवा नई दिल्ली 110003
और ईमेल आईडी
hindi.letters@bbc.co.uk। तो अगले कार्यक्रम तक आपसे विदा,
नमस्कार।
दिन भर में भी वक्त विदा लेने का हो रहा है लेकिन मुख्य समाचार सुन लेते हैं एक बार फिर मानसी दास से।
BBC समाचार। 2G घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और कनीमोड़ी समेत 17 लोगों को बरी कर दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र को झूठों का अड्डा कहा है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने कहा है कि वो वक्त के साथ आईफोन के कुछ पुराने मॉडल की परफॉर्मेंस यानी काम करने की क्षमता कम कर देते हैं। नाइजीरिया में अधिकारियों का कहना है कि मंकी पॉक्स नाम का संक्रामक रोग देश के 36 राज्यों में से 23 राज्यों में फैल चुका है। इस बीमारी से कम 60 लोग संक्रमित हो चुके हैं। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया और उरूज बानो। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।